पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अर्पा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित।
पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार का प्रसारण आप सुन रहे हैं अर्पा रेडियो से। आइए सुनते हैं समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष श्री संजीव लवानिया का व्याख्यान।
पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का बोध वाक्य उच्च शिक्षा आपके द्वार दूरस्थ या समीपस्थ युवा वर्ग अथवा कामकाजी वर्ग को अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने विषय विशेषज्ञों के माध्यम से पूर्णतया कटिबद्ध है।
नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर संजीव कुमार लवानिया आपके साथ में जैसे कि हम समाज शास्त्र की जो बेसिक अजम्पशंस हैं उनको आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बीए और एमए के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इनमें आज हम जो लेने जा रहे हैं वो है सामाजिक समूह यानी सोशल ग्रुप। हम जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ किसी न किसी समूह का सदस्य भी होता है। अगर अन्य शब्दों में समझें तो मनुष्य का जीवन एक सामूहिक जीवन है। प्रत्येक मनुष्य के कुछ न कुछ आवश्यकताएँ अवश्य होती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति वह किसी न किसी समूह का सदस्य बनकर ही कर पाता है। जी के अग्रवाल के अनुसार आज के जटिल समाज में कोई भी व्यक्ति कुछ समूहों का सदस्य बने बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। विभिन्न क्षेत्रों में इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले समूहों की संख्या इतनी अधिक है कि सरलता से उनका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि समूह शब्द से किसी व्यवस्था का बोध नहीं होता है, बल्कि यह कुछ व्यक्तियों का संग्रह है, इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल, जिनकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत सीमित होती है। समूह की विशेषता यह है कि इनके सदस्य किसी न किसी आधार पर एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, यानी कि उनके बीच में इंटीमेसी होती है और दूसरे समूह से अपनी पृथकता बनाए रखने की कुछ विशेष प्रकार के प्रतीकों को विकसित करते हैं। यानी कि अपने समूह में इंटीमेसी होती है और दूसरे समूह के साथ कुछ डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट होने के लिए कुछ अपने वो सिंबल भी डेवलप करते हैं। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि सामाजिक समूह एक प्रकार का संगठन जिसके सदस्य एक दूसरे को जानते हैं और वैयक्तिक रूप से एक दूसरे से अपनी पहचान स्थापित करते हैं। इस प्रकार स्वयं अपने समाज में हम समूह शब्दों का प्रयोग कुछ व्यक्तियों के संगठन के लिए करते हैं, जैसे परिवार, भीड़, सामाजिक वर्ग, विभिन्न प्रजातियां, धार्मिक अथवा व्यावसायिक वर्ग, विभिन्न शारीरिक अथवा मानसिक योग्यता के व्यक्ति आदि इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। समूह व्यक्तियों का एक ऐसा एकत्रीकरण है जिसका निर्माण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है, जैसे हम जानते हैं। इसको हम और विस्तृत समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम कुछ परिभाषाओं को समझते हैं जो सामाजिक समूह की परिभाषाएं विभिन्न समाजशास्त्रियों ने दी हैं। उनमें मैकावर पेज का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जैसे वो कहते हैं कि समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्यों के किसी भी ऐसे समूह से है जो सामाजिक संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे हों। हम समझ सकते हैं कि मैकावेज क्या कहना चाहते हैं, यानी वो कहते हैं कि जब संबंधों में लोग बंधे हुए होते हैं एक दूसरे के साथ तब वो एक समूह बनता है। ऐसे ही आग, वन और निवकॉम्प भी कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर रहें और एक दूसरे पर प्रभाव डालने लगेंगे तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने समूह का निर्माण कर लिया है। यानी जब लोग टुगेदर हों, साथ साथ हों, इन्फ्लुएंस करें एक दूसरे को, और जब ऐसी स्थिति बनती है तो हम उसको सोशल ग्रुप या सामाजिक समूह कहते हैं। समाजशास्त्री विलियम्स भी इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। विलियम्स ने पारस्परिक क्रियाओं के महत्व पर बल देते हुए कहा है कि एक सामाजिक समूह मनुष्यों के उस निश्चित संग्रह को कहा जाता है जो पारस्परिक अंतःक्रियाएं करते हैं और उस अंतःक्रिया की इकाई के रूप में ही दूसरों द्वारा मान्य होते हैं। बोगार्डस भी बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, उनका भी बड़ा समाजशास्त्र में योगदान है, उनके व्यू को भी समझते हैं। एक सामाजिक समूह दो या अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था को कहते हैं जिनका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्यों पर हो और जो एक दूसरे को प्रेरणा दे। तुम समझ सकते हैं कि एक दूसरे को जब फैक्ट करते हैं और एक दूसरे के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और उनके सामान्य उद्देश्य होते हैं तो सामाजिक समूह बनता है। मेरिल तथा एल्ड्रिज ने भी इसको और एलबोरेट किया है और इसका विस्तृत वर्णन किया है। वो कहते हैं सामाजिक समूह दो या अधिक व्यक्तियों का एक समूह है जिनमें एक लंबी अवधि से संचार होता रहता है और जो एक सामान्य प्रकार या प्रयोजन के अनुसार कार्य करते हैं। तो ऐसे हमने समझा कि सामाजिक समूह क्या है, उसका डेफिनेशंस को भी समझा, उसका अर्थ को भी समझा। इसका हम चाहें इसके साथ ही जो विशेषताएं हैं जो आइडेंटिफाई हम जिससे कर सकते हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स देख के, उनको भी समझ लेते हैं। जैसे इन परिभाषाओं के माध्यम से भी आपको बहुत सारा समझ में आया है और भी इसको जो निकल के आता है उसको ऐसे लेते हैं। नंबर एक, यह व्यक्तियों का संगठन है, यानी समूह के लिए व्यक्तियों का होना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी सामाजिक समूह एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बन सकता, इसके लिए कम से कम दो या अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। व्यक्तियों के समूह के मध्य ही अंतःक्रिया होती है। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो समूह में एकता, यूनिटी इन ग्रुप। समूह उस व्यक्ति तक ही बना रह सकता है जब तक उसके सदस्यों में एकता की भावना है। एकता के अभाव में समूह का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार समूह के सदस्यों में एकता की भावना का होना परम आवश्यक है। ऐसे इसका तीसरा पॉइंट, समान स्वार्थ की भावना, यानी स्वार्थ माने सेम इंटरेस्ट। जब हमारे अंदर फीलिंग ऑफ सेम इंटरेस्ट की होती है तो उसको कहते हैं समूह के सभी सदस्यों के स्वार्थ समान होते हैं, अतः उनकी भावनाएं भी एक समान होती हैं। यदि सदस्यों के स्वार्थ या हित असमान हों तो ऐसी दशा में न संबंधों में दृढ़ता होगी और न समूह में संगठन होगा। समान हित व रुचि, यानी एक चीज़ और आगे जाते हैं हम, जब सेम इंटरेस्ट है और हमारी जो लाइकिंग है, जो रुचि है, वो भी सेम है, तो प्रत्येक समूह की स्थापना उन्हीं व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है जिनकी रुचि व हित समान होते हैं। विरोधी हितों व रुचि वाले व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं कर सकते। नंबर पाँच, सहयोग की भावना, द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन। समूह के सदस्य आपसी सहयोग से कार्य करते हैं, इसीलिए ही उनमें हम की भावना पाई जाती है, परस्पर सहयोग की भावना समूह की प्रमुख विशेषता होती है। इसका जो छठवां पॉइंट है वो है सामाजिक स्तरीकरण, यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। फीचर कहते हैं कि प्रत्येक समूह के सामाजिक संरचना होती है और उस संरचना में व्यक्तियों की जो स्थिति है वो निर्धारित होती है, यानी जो स्टेटस है वो निर्धारित होता है, प्रिस्क्राइब्ड होता है। प्रत्येक समूह में आयु, व्यवसाय, जाति तथा लिंग के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। अन्य शब्दों में कहें तो समूह में समस्त व्यक्ति समान पदों पर नहीं होते, बल्कि वे अलग अलग परिस्थिति या भूमिका निभाते हैं। समूह में पदों का उतार चढ़ाव पाया जाता है। नंबर सात जो पॉइंट है वो ऐच्छिक सदस्य, यानी वॉलेंट्री मेंबरशिप। समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है, व्यक्ति अपनी रुचियों के तथा लक्ष्यों के आधार पर ही किसी समूह का सदस्य बनता है। नंबर आठ, सामाजिक संबंध, जो सोशल रिलेशनशिप है। समूह में केवल व्यक्तियों का होना भी आवश्यक नहीं होता है, बल्कि उनके मध्य प्रेम, सहयोग एवं सहानुभूति तथा त्याग जैसे सामाजिक संबंधों का होना भी आवश्यक है। नंबर जो नाइन पॉइंट है वो है कार्य विभाजन, जिसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। प्रत्येक समूह द्वारा लक्ष्य की पूर्ति वो अपने कार्य के सुविधानुसार संचालन के लिए समूह के सदस्यों में कार्य विभाजन पाया जाता है। पॉइंट नंबर 10, सामूहिक आदर्श। समूह की अन्य विशेषता सामूहिक आदर्श है। प्रत्येक समूह में सामूहिक आदर्श प्रतिमान बनाए जाते हैं जो सदस्यों के व्यवहारों को निश्चित करते हैं तथा उन्हें एक स्वरूप प्रदान करते हैं। समूह के प्रत्येक सदस्य यह अपेक्षा की जाती है वो समूह के आदर्शों और प्रतिमानों जैसे प्रथाओं, कानूनों, लोकाचारों, जननीतियों आदि का पालन करते हैं। और बड़ा महत्वपूर्ण एक पॉइंट है, पॉइंट 11, परस्पर जागरूकता। परस्पर जागरूकता के बिना कभी भी कोई समूह नहीं बन सकता है, ये हम जानते हैं। समूह के सदस्य एक दूसरे की समस्याओं और कठिनाइयों के प्रति जागरूक रहते हैं। मैकाइवर पेज ने पारस्परिक जागरूकता को समूह के आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया है। 12th और इसका जो हम अंतिम पॉइंट कह सकते हैं, इसका बिंदु, वह है ढांचा या स्वरूप। हर एक समूह का एक स्ट्रक्चर होता है, प्रत्येक समूह की संरचना का एक ढांचा होता है, अर्थात उसका संचालन नियम और कार्य प्रणालियों द्वारा होता है। तो इस तरह से आपने अभी सामाजिक समूह की कॉन्सेप्ट को समझा, उसकी परिभाषाओं को समझा, उसकी विशेषताओं को समझा। इसके साथ ही हम समूह के जो प्रकार हैं उनको भी समझ लेते हैं कि समूह का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स, वो उनकी संख्या के आधार पर भी किया जाता है। जैसे विभिन्न समूह छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हैं। उन समूहों में सामाजिक संबंध किस प्रकार के होंगे, इनके सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। जॉर्ज सिमिल, जॉनसन्स तथा होमसन्स ने छोटे समूहों को समाज के आधार के रूप में महत्वपूर्ण माना है। इन विद्वानों के अनुसार छोटे समूहों के माध्यम से ही समाज में व्यक्तियों के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। सदस्यों की संख्या के आधार पर मैकाइवर और पेज ने राष्ट्र एवं प्रांत जैसे बड़े समूहों का उल्लेख किया है। होमन्स ने भी छोटे समूहों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला है कि मानव की समाज में ऐतिहासिक निरंतरता केवल छोटे समूह के रूप में कायम रही है। वहीं समाजशास्त्री मर्टन ने अंतःक्रिया की कमी के कारण राष्ट्र को समूह के रूप में स्वीकार नहीं किया है, परंतु यह निश्चित है कि एक राष्ट्र के सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है और साधारणतः लोग राष्ट्रीय हितों के प्रति सचेत रहते हैं। व्यापार, गिल्ड्स, धर्म, वर्ग, राष्ट्र, साम्राज्य, संस्कृतियों, सभ्यताओं सभी समय समय पर विघटित की हुई हैं और नष्ट हुई हैं और तोड़ी गई हैं। इतना होने पर भी प्रत्येक समाज में विघटन के मध्य भी अपने अस्तित्व को बनाए रख पाता है। 2, स्थायित्व के आधार पर समूह को स्थायी अथवा अस्थायी समूह के रूप में वर्णित किया जा सकता है। कुछ समूह सार्वभौमिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, ऐसे समूह में परिवार, नातेदारी, समूह, शिक्षण संस्थाएं आदि की अत्यंत आवश्यकता बनी रहती है। ऐसे समूह स्थिर समूह कहलाते हैं, स्थिर समूह कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जो अस्थाई समूह भी होते हैं, जैसे भीड़ श्रोता समूह, जो बहुत ही कम समय के रूप में बने रहते हैं। कुछ समूह ऐसे भी होते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य को लेकर बनाए जाते हैं और उद्देश्य की पूर्ति हो जाने पर स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। 3, समरण ने हम की भावना या फीलिंग ऑफ वी के आधार पर समूह का वर्णन किया है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री समरण ने हम की भावना के आधार पर समूह को दो विभागों में विभाजित किया है। जो पहला ग्रुप है उसको अंतःक्रिया यानी अंतः समूह बोलते हैं, इन ग्रुप, और दूसरा उसको बाह्य समूह बोलते हैं, आउट ग्रुप। समरण के अनुसार अंतः समूह के सदस्यों में आपस में हम की भावना पाई जाती है, इसलिए समूह में सदस्यों की एकता दिखाई पड़ती है। अंतः समूह के सदस्य अपने समूह को श्रेष्ठ व दूसरे समूह को अपने से हीन समझते हैं। इस समूह के सदस्य व्यवहार के सामान्य नियमों का पालन करते हैं और इन्हीं नियमों के आधार पर वे एक दूसरे से बने रहते हैं। उसी प्रकार बाह्य समूह का भी अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इस समूह में भी अंतः समूह के समान विशेषताएँ पाई जाती हैं। अंतः समूह और बाह्य समूह हम और वे की भावना पर आधारित होते हैं। एक जो ग्रुप का आधार है, जो क्लासिफिकेशन का, वो प्रकारात्मक यानी फंक्शनल बेस पर, इन व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के समूह का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षणिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, बौद्धिक, कलात्मक एवं मनोरंजनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति इसी आधार पर बने समूहों के द्वारा होती है। नगरों में व्यावसायिक संघ, क्लब, राजनीतिक मंडल, शिक्षण संस्थाएँ और संगीत मंडल आदि होते हैं। गिडिंग्स तथा ग्लिन विद्वानों ने इन समूहों को ऐच्छिक तथा अनैच्छिक नाम से संबोधित किया है। एक जो क्लासिफिकेशन का समूह का आधार है, वो औपचारिक और अनौपचारिक समूह है। समूह का वर्गीकरण औपचारिक और अनौपचारिक रूप में भी किया जाता है। औपचारिक समूहों की स्थापना कुछ निश्चित नियमों के आधार पर की जाती है। इनकी स्थापना किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। औपचारिक समूहों के सदस्यों में परस्पर घनिष्ठता व आत्मीयता का अभाव पाया जाता है। दस समूहों के नियमों द्वारा उन पर नियंत्रण रखा जाता है एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले को समूह से बहिष्कृत करके दंडित किया जाता है। औपचारिक समूह में विभिन्न राजनीतिक दल, श्रम संगठन, विद्यार्थी परिषद, कॉलेज स्कूल आदि आते हैं। औपचारिक समूह में सदस्य अधिक होते हैं, अतः इनका आकार बड़ा होता है। इन समूह व्यक्तियों के कार्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। औपचारिक समूह का निर्माण विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। अनौपचारिक समूह प्राथमिक समूह के बहुत अधिक निकट होते हैं। इन समूह में सदस्यों की संख्या कम व आकार छोटा होता है। अनौपचारिक समूह के सदस्यों में आत्मीयता, घनिष्ठता, शारीरिक समीपता, संबंधों में स्थिरता व निरंतरता पाई जाती है। इन सदस्यों में हम की भावना अधिक होती है। और भी जो इसके जो क्लासिफिकेशन है समूह का, उनमें एक जो बेस है वो है आकांक्षा का आधार, यानी एस्पिरेशन लेवल। यह समूह निर्धारण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। मॉर्टन ने इस आधार संदर्भ समूह की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की है। मॉर्टन ने इस समूह को संदर्भ समूह माना है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं है लेकिन सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है। यह आकांक्षा उसकी मनोवृत्ति, मूल्यांकनों, व्यवहारों को प्रभावित करती है। नंबर 7 एक और जो सामाजिक समूह के क्लासिफिकेशन का आधार है, सामाजिक संबंधों का आधार, यानी बेस ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सामाजिक के जो वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार है सामाजिक संबंध। इसमें सामाजिक संबंधों की गहनता के आधार पर समूहों का वर्गीकरण किया जा सकता है। चार्ल्स कूले ने संबंधों की घनिष्ठता के आधार पर प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। इसके पश्चात समाजशास्त्रियों ने प्राथमिक समूह से विभिन्न विशेषताओं वाले समूह को द्वितीय समूह के नाम से संबोधित किया है। इस तरह से हमने इसका जो सामाजिक समूह का क्लासिफिकेशन है उसको भी समझा। एक अंत में एक दो कॉन्सेप्ट को और हम यहाँ डिस्कस करेंगे, वो है प्राथमिक समूह। चार्ल्स कूले ने 1909 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संगठन यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन लिखा, उसमें उन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा को दिया है। प्राथमिक समूह को अगर हम समझें तो वो कूले ऐसे लिखते हैं कि प्राथमिक समूहों से अभिप्राय उन समूहों से है जिनकी प्रमुख विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और सहयोग की भावना है। ये समूह विभिन्न प्रकार से प्राथमिक हैं लेकिन प्रमुख रूप से इस अर्थ में हैं कि वे व्यक्ति सामाजिक प्रकृति और आदर्शों का निर्माण करने में मौलिक हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से इन घनिष्ठ संबंधों के फलस्वरूप समस्त व्यक्तियों का एक संपूर्णता में इस प्रकार मिल जाना है कि अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक ही व्यक्ति के विचार उद्देश्य संपूर्ण या सामान्य जीवन और उद्देश्य बन जाता है। संपूर्णता को अभिव्यक्त करने के लिए संभवतः सबसे सरल तरीका यह है कि इसे हम द्वारा संबोधित किया जाए। इन संपूर्णता में इस प्रकार की सहानुभूति और पारस्परिक एक रूपता की भावना पाई जाती है जिसके लिए हम एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। तो कूले ने ये प्राथमिक समूह का वर्णन किया है। समाजशास्त्र में कूले के प्राथमिक समूह की काफ़ी बात होती है, इसको समय समय पर उद्धृत भी किया जाता है। इसी के आधार पर जो दूसरा जो समाजशास्त्रियों ने जो दूसरा जो ग्रुप दिया हुआ है द्वितीयक समूह, कूले ने प्राथमिक समूह की बात करी तो द्वितीयक समूह बड़ा ही नेचुरल है समझना इसको, कि वे समूह जो घनिष्ठता की कमी का अनुभव करते हैं द्वितीयक समूह कहलाते हैं। चार्ल्स कूले के शब्दों में समझें तो ये ऐसे समूह हैं जो घनिष्ठता रहित होते हैं और प्राय इनमें अन्य प्राथमिक तथा अर्ध प्राथमिक विशेषताओं का भी अभाव रहता है। तो इस प्रकार हमने आज सामाजिक समूहों को समझा, उनकी परिभाषाओं को समझा, उनकी विशेषताओं को समझा, सामाजिक समूह के प्रकारों को समझा और साथ में ही हमने प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह को समझने का आपने जरूर प्रयास किया हुआ आप समझे होंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।
यही सुभाषित इसी मंत्र से सुरभित उपवन अपना, मातृभूमि और सृष्टि की सेवा का सुंदर सा सपना। सा सुंदर सा सपना।